बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर, कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैशबैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाय
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
Milton, we are back. This time with Pakistan sensation Kaifi Khalil. 3rd annual Handi Milton Halal Food Festival, Saturday, August 17th, from 12 p.m. to 10 p.m. Milton Community Sports Park, 805 Santa Maria Boulevard. Free admission, free parking. For details, call Amir Shamsi, 416-662-7861 and Sara, 647-821-7861.
Truck ka ghoomta bhaiya Canada ki moishat ki tarakki ka zamin. आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktruckloop.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां मारने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ, 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है 786 मूविंग प्लस।
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर्स सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए 416-786-6000, 416-786-6000।
वेलकम बैक तमाम सामईन को 770 AM डायल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और मेरे साथ होती हैं न्यूज के लिए शाजिया मलिक साहब। जनाब आज हमारा और आपका सिलसिला आज भी 8:15 बजे तक रहेगा। जाहिर है आप 770 को 8:15 बजे तक सुन सकेंगे, लेकिन आपको पता है कि हर जुमेरात को लियाकत मलिक साहब अपना भूली बिसरी यादें प्रोग्राम लेकर आते हैं, जो आप खबरों के फौरन बाद सुन सकेंगे। यानी 7 से लेकर 8:15 के दरमियान आप आज भी रंगारंग प्रोग्राम भूली बिसरी यादें, जिसे लियाकत मलिक साहब प्रोड्यूस करते हैं, होस्ट करते हैं, वो आपके लिए पेश करेंगे। ठीक हो गए जनाब? और तमाम ही मुबारकबाद के हकदार 15 अगस्त, तमाम इंडियंस हमारे बहन भाई जो सुन रहे हैं हमें और जो देख रहे हैं, जनाब आप लोगों को भी तहे दिल से आपका इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। आज 15 अगस्त है तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत ही अपना जश्न आजादी मुबारक, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल आपके लिए भी खुशियों वाला साल लेकर आए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं शाजिया मलिक साहिबा को। खूं कर रही है बेसिकली, यू नो, मतलब अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया जानती है इस चीज को। अब तो शहर टोरंटो नहीं, पूरी दुनिया ही जानती है हु इज राइट हु इज रॉन्ग। चले शाजिया मलिक साहिबा की मुस्कुराहट भरी चेहरे को, नूरानी चेहरे को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं?
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा पहली तो तुम्हारी गलती मैं तुम्हें इधर ही बता दूं, ये तुमने कहा ना कि हमारे इंडियन भाइयों को भी जश्न आजादी मुबारक, जश्न आजादी मुबारक नहीं होता, आजादी मुबारक होता है। जश्न कैसे मुबारक हो सकता है भाई?
जश्न आजादी आपने
जश्न आजादी मुबारक नहीं होता, कोई वर्ड नहीं है जश्न आजादी मुबारक। यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है उसका आप उनको वो दे रहे हो, तो जश्न आजादी तो आजादी मुबारक
पड़ी होती ना,
आजादी मुबारक है, जश्न आजादी मुबारक यानी कि सेलिब्रेशन मुबारक तुम उसको बोल रहे हो उनको, सेलिब्रेशन मुबारक।
जश्न आजादी मुबारक
नहीं,
उसके आगे आप जो नेप नहीं पढ़ रही,
आजादी मुबारक आपको, आजादी मुबारक। और मनाते हैं
आपके पास, हमारे पास 7 बजे वाला टाइम होता ना,
हाँ जश्न आजादी आप मनाते हैं,
या तो फिर मैं गलत हूँ।
यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, ओके?
अंग्रेजी तो हमें आती
हाँ,
हम लोग कहते हैं जी जश्न आजादी मुबारक।
जश्न आजादी मुबारक कैसे हो सकता है भाई? आजादी मुबारक होता है, जश्न उसका मुबारक कैसे है? आजादी मुबारक है और आजादी का जश्न मनाते हैं। नहीं कैसा तुम्हारा उर्दू है, खराब किस्म का बकवास जो है।
उर्दू को कुछ नहीं बोलिएगा, बता रहा हूँ आपको,
तुम्हारी की मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी जो इंतहाई खराब है।
अच्छा मेरी खराब है उर्दू?
हाँ
मेरी खराब है।
हाँ
मतलब सोचो हु इज टॉकिंग अभी, मतलब हु इज गुफ्तो शनीद।
अच्छा बाप बाप बाप, इधर ही रोकिए, इधर ही रोकिए, इधर ही रोकिए, देखिए किबला इधर ही रोकिए, आगे मत जाइए।
टाइम कम है, छेड़े नहीं,
छेड़े नहीं।
हाँ,
फिर तुम आज ये कुत्ते वाली टी शर्ट पहनकर आ गए हो भाई, ये तो मतलब है क्या प्यार है टी शर्ट के साथ।
आपने अभी कहा ना वो जश्न नहीं होता, जश्न आजादी नहीं होता, आजादी का जश्न होता है।
हाँ
ये वही डिफरेंस है कि कुत्ता नहीं ये चीता है, बस वही फर्क है।
लेकिन लग तो हमें कुत्ता ही रहा है ना ये, तो अब
वही बात है, अब आपकी ऐनक में ये कुत्ता दिख रहा है तो दुनिया इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी।
अच्छा अच्छा अच्छा,
दुनिया जश्न आजादी ही मनाएगी।
अच्छा हाँ, जश्न आजादी मनाते हैं तो आजादी मुबारक और जश्न आजादी मनाते हैं, मनाते हैं। यस
चलें जी, अब इनको छोड़े, इनको
कहते हैं कि
खबरें सुना दें आप इससे पहले कि आपकी खबरें ठंडी हो जाएं।
हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं हमने तवे पे रखी हुई है और वैसे भी हमने जो है ना चांद मेरी जमीन पे भी हमने थोड़ी देर रखी थी।
चांद ठंडा है ना?
नहीं कहीं 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 गर्म हो रहा है।
खबरें सुनाएं।
ओके जी। अच्छा जनाब, अगर आपको दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ये जो है लेम्फी है जी,
लेम्फाई
अगर आपको भेजना है पाकिस्तान में पैसे तो इसके लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं आ गई हैं और आपको जो है $30 का कैश बैक मिल सकता है ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ $250। इसके अलावा आप प्रोमो कोड अगर यूज करेंगे eawaz10, प्रोमो कोड है eawaz10, तो अगर आप भेजेंगे अपने एंड्रॉयड या एप्पल फोन के थ्रू तो आपको जो है वो जीरो ट्रांसफर फी पड़ेगा, तो आप जरूर ये जो सर्विस है इसकी हेल्प लें। ठीक है जी। और इसके अलावा ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट के दो रेस्टोरेंट्स हैं जनाब, आपको पता ही है, एक मिसेस सागा में है, उसका नंबर है 9052323663 और एक है ओकविल में, वो है 9052262294 एंड डॉक्टर फियाज कुरेशी कहते हैं जी आओ सही मेरे को थोड़े सारे दंद मैं सिद्धे करा, जितने डिंगे हुए जितने आपके जो है कोई नीले हैं पीले हैं डिंगे हैं जैसे भी है सीधा कर देते हैं बिल्कुल जो है। तो इनके तीन क्लिनिक्स हैं, दो मिसिसागा में है, उसका नंबर है 9052325678 और एक जो है स्कॉर्ब्रो में है, उसका नंबर है 4167579999। ठीक है जी, हम अपनी शुरू करते हैं खबरें आज की और मैं आपको बताऊं कि जी आज ऑन्टेरियो की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो यही है कि जो चाइल्ड केयर ऑपरेटर्स हैं जिसमें क्या कहा गया था कि $10 पर डे प्रोग्राम जो स्टार्ट किया जाएगा तो बहुत सारे ऑपरेटर्स ने कहा था कि हमारे पास इसको चलाने की कैपेसिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी इसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं टॉड स्मिथ साहब, उन्होंने आज कहा जी कि हमें पता है बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो नया फार्मूला है ये जो प्रिवेंट करेगा इनको क्लोज करने से और ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके ऊपर स्टेबिलिटी लेकर आएगा, यानी कि ऑपरेटर्स कौन से जो चाइल्ड केयर सेंटर्स चलाते थे उनकी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ये टेलीफोन ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे। ठीक है जी, उसकी तो उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारी फैमिलीज हैं इनको फिर फायदा होगा इसलिए कि जब ये स्पेसेस बंद नहीं होंगी तो बच्चों को भेज सकेंगे पेरेंट्स और ये सारा जो न्यू फार्मूला है ये इफेक्टिव रहेगा January 1st से। उन्होंने कहा जी कि इससे पेरेंट्स जो है उनकी भी फीसें नीचे आएंगी और तकरीबन 50% से एवरेज जो है वो रहेगा $23 पर डे और नेक्स्ट ईयर जो है उसमें आ जाएगा ये एवरेज $19 और इसको फिर कैप किया जाएगा $22 के ऊपर पर डे के ऊपर। इसके ऊपर इन्होंने और फर्दर बात करते हुए कहा जी कि बाय March 2026 दिस इज गोइंग टू हिट देन $10 पर डे, तो यानी कि वो जो प्लेज किया गया था, वैसे तो ये चाहते थे कि September 2025 में ही इसको इंट्रोड्यूस करा दें लेकिन अब चूंकि वो कुछ ग्लिचेस आ गई हैं तो वो कहते हैं जी अब ये March 2026 तक जाएगा और इसके लिए वो कहते हैं जी कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी उसने हमें कहा था कि 86,000 जो है न्यू चाइल्ड केयर स्पेसेस आएंगी और लेकिन अभी तक इसमें से सिर्फ 51,000 आई हैं फॉर किड्स 5 एंड अंडर और ओनली 25,500 जो हैं वो अभी तक ये ऑफर कर सके हैं $10 पर डे का सिस्टम, यानी कि वो इम्प्लीमेंट कर सके हैं। प्रीमियर डग फोर्स ऑफ जो हैं जी उनके ऊपर लोगों ने बेतहाशा एतराज किया, उसकी वजह यह है कि कल ये जो है किंग एनिमल हॉस्पिटल इन किंग सिटी जो है वो एक वेटरनरी हॉस्पिटल था जिसको कि ये इनॉग्रेट कर रहे थे और वहां पे ऑपोजिशन एमपीपीज ने इनके ऊपर इसलिए एतराज लाया कि इन्होंने कहा जी कि ये इतना जबरदस्त और ग्रैंड हॉस्पिटल है कि मुझे लग रहा है कि यहां पे बहुत सारे पेशेंट्स एमआरआईज और सीटी स्कैन्स के लिए भी आएंगे। अब इसमें लोग भड़क गए कि भाई ये तो जानवरों का हॉस्पिटल है। डॉक्टर आदिल श्यामजी जो हैं एमपीपी फॉर डॉन वैली ईस्ट उन्होंने और ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी के क्रिटिक हैं फॉर हेल्थ, उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने जोक किया है ये चीज रिवील करता है कि ऑन्टेरियो का हेल्थ केयर सिस्टम जो है कितना लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ ऑन्टेरियो पेशेंट्स जो हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनका एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं हो जाता है और ये तो फिगर सिर्फ लास्ट ईयर की है, इसके अलावा और कितनी डेथ्स होती हैं उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा जी कि इनका जो जोक है वो इसलिए बहुत ज्यादा भद्दा है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो लाइन अप करके और ये इन चीजों का वेट करते हैं, तो इनका मतलब ये है कि अब ये एक एनिमल्स के हॉस्पिटल के बाहर अब लाइन अप करके इन चीजों का वेट करें। फोर्ड के ऑफिस ने कहा कि उसको डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि जी 2018 से हमने 49 न्यू एमआरआई मशीन, 50 न्यू सीटी स्कैनर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स को दिए हैं और अब 500,000 आवर्स ऑफ एमआरआई और सीटी स्कैन्स बढ़ गए हैं। जून के अंदर एवरेज वेट टाइम फॉर एमआरआई 90 डेज था और 81 डेज था सीटी स्कैन का, जिसको के वो कहते हैं जी कि अब हम कट करके 28 डेज करेंगे। लिबरल लीडर जो है बॉनी क्रॉम्बी, उन्होंने भी इसको इनके कमेंट्स को डिसग्रेसफुल कहा। उन्होंने कहा कि 6 साल से ये जो अंडर फंडिंग की जा रही है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, उसका तो मतलब हमें समझ आ ही रहा, क्योंकि आप ज्यादातर इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और आपने ये जो जोक किया है ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। फॉर्मर एनडीपी एमपीपी फैसल हसन जो हैं, उन्होंने भी कहा जी कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियर साहब का डिसकनेक्ट है फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ ऑन्टेरियो हेल्थ केयर क्राइसिस, और उन्होंने कहा जी कि इसको चैलेंज को टैकल करने की जरूरत है क्योंकि पेशेंट्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन्टेरियो एनडीपी के जो लीडर हैं मैरिट स्टाइल्स, उन्होंने भी कहा कि जो फोर्ड साहब और उन जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है ये सारा कुछ गैलन वेस्टर्न टाइप के लोगों को ये सारा कुछ दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी बिलियनर्स हैं और इन चीजों से और बिलियंस बना रहे हैं। टोरंटो पुलिस जो है जी उसने आज अरेस्ट किया है 32 लोगों को एंड दे हैव लेड चार्जेस ऑन 100 दे हैव लेड ऑन देम 158 चार्जेस आफ्टर 11 मंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन टोरंटो स्ट्रीट गैंग जो कि यूज कर रहा था कनाडा पोस्ट को टू डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस। वाह जी वाह क्या बात है। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट फॉक्स और इसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेट जो कर रहे थे इसको टारगेट किया था एक्टिविटीज जो जेम्स टाउन क्रिप्स के अंदर हो रही हैं जहां पे के स्ट्रीट में जहां पे के गैंग्स बहुत सारे होते हैं और वैसे तो ये इनके रूट्स जो हैं वो कहते हैं जी इटोबिको एरिया में है लेकिन ये बहुत और भी जगहों पे फैले हुए थे। एज अ रिजल्ट ऑफिसर्स ने 35 सर्च वारंट्स निकाले थे टोरंटो हैमिल्टन वॉन ब्रैम्पटन मिसिसागा गोल्फ थॉम्सन एंड मैनिटोबा के अंदर जिसके लिए फिर ये 32 सस्पेक्ट्स को पकड़ा था। पुलिस ने सीज किए 9 फायर आर्म्स 4.7 किलोग्राम्स ऑफ कोकेन जिसकी के स्ट्रीट वैल्यू है 568,000 एंड 6 किलोग्राम्स ऑफ मेथ जिसकी के स्ट्रीट वैल्यू है 480,000 ओवर 320,000 इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्होंने पकड़े। और पुलिस जो है उसने इनिशियली यॉर्क रीजनल पुलिस और पील रीजनल पुलिस और ओपीपी के साथ मिलकर ये सारी इन्वेस्टिगेशन चलाई थी। पुलिस का कहना है जी कि हम जो है यहां पे जो बड़े वेल एस्टैब्लिश टोरंटो का रेक्सडेल नेबरहुड है वहां पे भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा डिसअप्रोप्रिएटली यहां पे क्राइम्स का हाइक है और यहां पे क्राइम्स होते हैं जैसे कि शूटिंग एंड कार जैकिंग एंड रॉबरीज। इन सस्पेक्ट्स को जिनको पकड़ा है जरा एज देखें इनकी फिर से, इनकी एजेस जो है 16 ईयर से लेके 40 ईयर्स के बीच में है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मुल्क में क्राइम कितना बढ़ता चला जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने के जो है अफ्रीका में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर्स और डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल तेड्रोस अब्राहम गेब्रियासिस, उन्होंने कहा जी कि अफ्रीका के अंदर एक ग्लोबल इमरजेंसी हम अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि मंकी पॉक्स जो है वो बेतहाशा उसके केसेस आ रहे हैं किड्स में और एडल्ट्स के अंदर और ये वायरस की नई फॉर्म आ गई है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा जी कि सबको इसका कंसर्न होना चाहिए और ये जो है अगर अफ्रीका से आगे जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा खतरे का बायस है। अभी तक डब्ल्यूएचओ ने 13 कंट्रीज के अंदर इस साल ये केसेस जो हैं ये पकड़े हैं। 96% ऑफ ओवरऑल केसेस एंड डेथ्स जो हैं वो कांगो के अंदर हो रही हैं और केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं 160% और डेथ्स जो हैं 19% कंपेयर टू 2023 इन द सेम मंथ और 14,000 केसेस जो हैं अभी तक इन्होंने डिटेक्ट किए हैं जिसमें से कि 524 लोगों की डेथ्स हो चुकी है। तो एज अ रिजल्ट इन्होंने इसको मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी आज जो है वो डिक्लेयर किया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं वो जनाब 4 जर्मनी के जो एयरपोर्ट्स थे उसके टर्मिनल पे आज जाके बैठे हुए थे और जो यहां पे बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स थी उसकी फिर सारी की सारी जो ट्रैफिक थी उसको हॉल्ट करना पड़ा। ये जो ग्रुप है इसका नाम है लेट्स से जनरल और ये इनमें से 8 लोग जो थे टैक्सी वे में से एंटर होके कोलोन, बॉन, न्यूरनबर्ग, बर्लिन, स्टटगार्ट एयरपोर्ट्स पे आगे बैठ के बिल्कुल चिपक गए। वो कहते हैं दे ग्लूड देमसेल्व्स, बिल्कुल चिपक के बैठ गए वहां पे और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। ये डिमांड कर रहे हैं कि आप ऑयल, गैस और कोल जो है इसको बिल्कुल एक्सटेंड करें इसका यूज बाय 2030, जिसकी वजह से फ्लाइट्स बहुत सारी खासतौर पर न्यूरनबर्ग और कोलोन बॉन के अंदर जो है डिस्ट्रप्टेड रही। 5 लोगों को फिर पुलिस ने रिमूव किया बर्लिन और स्टटगार्ट से। यहां पे जो है ज्यादातर ऑपरेशंस अनअफेक्टेड रहे, लेकिन जो बाकी के थे लोग उनकी वजह से काफी जो है प्रॉब्लम्स रही। 8 लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन सबके सबको अरेस्ट किया। इंटीरियर मिनिस्टर नैन्सी फ्रेजर जो है उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्शन है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और स्टूपिड है। इन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ को डेंजर में डाला बल्कि दूसरों की लाइफ को भी डेंजर में डाला। और जो कैबिनेट के अंदर जो जर्मन कैबिनेट में जो भी लॉ बनाया गया है लास्ट मंथ, उसके अंडर इनको अब टफर पेनल्टीज जो है वो दी जाएंगी। तो ये पायजन जो है ना बड़ी आज खतरे की वैसे खबर है वाकई। जहाज वहां पे आ रहे हैं और आप बैठे हो, हिट अगर आपको जहाज करे तो पड़कजे उड़ जाएं भैया आपके। तो रॉयटर्स की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक हालांकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस मर चुके हैं, फिर भी यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज जो हैं दबा दब जो है इसराइल को दे रहे हैं बहुत सारा एड। यूएस जो है उसने जी अभी रिसेंटली भी 20 बिलियन यूएस डॉलर का जो वेपन सेल है उसके लिए वे क्लियर किया है फॉर इसराइल आफ्टर गाजा वॉर। यूके ने भी जो है 100 एक्सपोर्ट लाइसेंसेस दिए थे फॉर सेल ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इसराइल। और इसकी जो डील्स की वैल्यू है अभी तक यूके ने इसकी अनाउंस नहीं की है, लेकिन 2008 और 2023 के एंड तक यूके ने बेशुमार जो है लाइसेंसेस दिए थे। अलबत्ता इन लाइसेंसेस की जो कीमत है वो है 740 मिलियन डॉलर्स के पास। यूके जो है उसने रिलेटिवली अमेरिका से कम दिए हैं ये वेपन्स, 53.2 मिलियन डॉलर्स के इन्होंने वेपन्स दिए थे 2022 में और 22.8 मिलियन डॉलर्स के इन 2023। यूएस की जो एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं वो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स को टच कर रही हैं, विच इज पार्ट ऑफ द 10-ईयर प्रोग्राम। नवंबर के अंदर यूएस ने जो एडिशनल एड दी थी 14.59 की इन मिलिट्री पैकेज टू इसराइल, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात उठाई गई थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने अब एस्टीमेट किया कि यूएस के एक्सपोर्ट्स जो है 69% ऑफ जो टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट इसराइल को की जाती है वो मेकअप करते हैं। जर्मनी और जर्मनी जो है इसराइल का सेकेंड बिगेस्ट प्रोवाइडर है आफ्टर यूएस, और इन्होंने जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं दैट इज वर्थ 354 मिलियन इन 2023, विच इज 10 टाइम्स मोर देन 2022। जनवरी 20th को अभी जो इटालियन फॉरेन मिनिस्टर थे एंटोनियो तजानी, उन्होंने बताया था मीडिया को कि अब हम बिल्कुल कोई वेपन्स इसराइल को नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से वॉर में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। इसके अलावा स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर जो थे जॉस मैनुअल एल्बरेज, उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी कि हम मोर वेपन्स नहीं देंगे इसराइल को। अलबत्ता जो बेल्जियम की रीजनल गवर्नमेंट ऑफ वेलोनिया है सिर्फ उसने सस्पेंड किए थे आर्म्स एक्सपोर्ट टू इसराइल, बेल्जियम ने कोई इसके ऊपर क्लियर बात नहीं की थी। एंड दिस हैपन्ड ऑन February 5th दिस ईयर। इसी के साथ साथ फ्लेमिश गवर्नमेंट जो है उसने भी सस्पेंड नहीं किए हैं और वो भी कॉन्स्टेंटली इनको आर्म्स दे रहे हैं इसराइल को। 2023 में इन्होंने जो है 9 एक्सपोर्ट लाइसेंसेस इशू किए थे थ्रू अ मिडल ईस्टर्न कंट्री जो कि अलेजली कहा जा रहा है कि यूएई था। और फ्रांस जो है वो भी अपनी पोजीशन इस पर क्लियर किए हुए नहीं है, हालांकि दुनिया में काफी शोर है कि आप लोग बंद करें ये आर्म्स डील्स इनके साथ। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो है गाजा की जो वॉर है उसमें टॉक्स जो है सीज फायर टॉक्स फिर से जो है वो शुरू हो गए हैं और इसके अंदर यूएस जो है वो मीडिएट कर रहा है और इसके पार्टनर्स जो हैं इजिप्ट और कतर हैं और ये सारी की सारी टॉक जो है दोहा के अंदर शुरू हो गई है। गाजी हमदी जो हैं हमास के निगोशिएटिंग टीम के जो लीडर, उन्होंने कहा जी कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ये फर्स्ट सब्सटेंशियल टॉक्स हैं जो कि हो रही हैं अब इस्माइल हानिया की डेथ के बाद जो कि हमास के चीफ थे। उन्होंने डिनाई किया वैसे तो इसराइल ने अपना रोल, लेकिन कुछ अंदर की जो खबरें वाशिंगटन पोस्ट के पास आई हैं वो कहते हैं जी कि इन्होंने इसराइल ने वैसे सीक्रेटली यूएस को जरूर बताया कि हां हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी डेथ के लिए। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं जो इसराइल ने हाल कर दिया है पैलेस्टाइन का, यानी ये जो है दिस इज नॉट द साइट ऑफ अ न्यूक्लियर ब्लास्ट, लेकिन फिर भी आप देखें कि कितने मिसल्स और कितना कुछ मारा होगा कि ये बिल्कुल एक रबल बन गया है पैलेस्टाइन। तो अब यहां पे अब जो बातचीत शुरू हुई है उसमें हमास ने कहा जी कि हम बड़ा क्लोजली इसको देख रहे हैं और आपकी जो भी कोई इसके अंदर डेवलपमेंट होगी उसमें अंदर हम आके फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है विधांत पाटिल, उन्होंने कहा जी कि कतारी डिप्लोमेट्स ने हमको अश्योरेंस दी है कि वो हमास के साथ बैठेंगे। इसके साथ साथ यूएन ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसी है उसने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि ये जो कॉन्स्टेंटली इसराइल अटैक्स कर रहा है, जो अभी भी किया है इसने गाजा के स्कूल के ऊपर जिसमें कि 100 लोगों की डेथ हुई है, तो ये अब इसका जो है ये ऐसा नहीं हुआ कि ये गलती से इसका हुआ है, ये अब जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि अब स्कूलों के ऊपर अटैक्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने बढ़ा दी है। तो ये जनाब बड़ी खतरे में नाक जो है वो, वैसे ही अफसोस की खबर है लेकिन अब इस पे इसराइल जो है वो उसको चूंकि अंकल सैम का थाबड़ा है तो वो अब पीछे हट ही नहीं रहा ऐसे। रिपोर्ट्स आई है जी एक यूएस बेस्ड न्यूज आउटलेट पॉलिटिको से, और पॉलिटिको की ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आ जाई है इसके मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस जो है उन्होंने यूएस को कहा है कि उनकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि यूएस इनको कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहा है कि तुम वाहिद बिग कंट्री अब रह गए हो रीजन में जो कि इसराइल के साथ दोस्ती नहीं बना रहे हो। और इन्होंने ये जो इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई है इसमें इन्होंने इजिप्शियन लीडर अनवर सादात का जो है जिक्र किया है कि उसको असैसिनेट कर दिया था 1981 में इजिप्शियन एक्सट्रीमिस्ट ने जब उसने ट्रीटी किया था, पीस ट्रीटी किया था इसराइल के साथ, तो मुझे भी इस तरह के जो हैं वो थ्रेट्स हैं लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम इसराइल के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसराइल एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ जाए, हम बिल्कुल हम डिटर्मिंड हैं कि हम इनके साथ दोस्ती बना के रहना चाहते हैं लेकिन यहां पे सऊदी के अंदर जो सिचुएशन है बड़ी ग्रेव है और लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो यूएस कांग्रेस है उसको उन्होंने कहा कि जी ये जो थ्रेट्स हैं ये बिल्कुल हैं मेरी लाइफ पे, लेकिन अगर इसराइल एग्री करता है कि एक फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट बनाए तो फिर जो है इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। अब यूएस ऑफिशियल्स कहते हैं जी कि जब उनकी इसराइल के साथ बात होती है तो अभी तक वो एग्री नहीं कर रहे हैं फॉर एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। तो जिस वक्त तक ये इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की डील नहीं होएगी उसमें फिर सऊदी जो है वो इसराइल के साथ दोस्ती नहीं बना सकेगा, आज सऊदी क्राउन प्रिंस ने ये यूएस को बताया है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिको। अच्छा जनाब, एएफपी की रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो है मॉब्स जो हैं बांग्लादेश में उन्होंने बैम्बू स्टिक्स और प्लास्टिक पाइप्स जो थी उससे ये जो शेख हसीना के थे सपोर्टर्स उनको मारा, क्योंकि आज जो था एनिवर्सरी था 1975 असैसिनेशन ऑफ हर फादर शेख मुजीबुर रहमान, जिनको के मार दिया गया था मिलिट्री कू के अंदर। तो शेख हसीना ने आज के दिन 15 अगस्त को वो जो है एक नेशनल हॉलिडे उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पे जमा हुए हुए थे ये देखने के लिए कि अवामी लीग के कोई सपोर्टर्स जो हैं वो रीग्रुप तो नहीं कर रहे हैं, हालांकि शेख हसीना तो मुल्क में नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो डिक्टेटर हैं शेख हसीना, इनके गूंज और मिलिशिया फोर्सेज जो हैं ये जो हमें काउंटर रेवोल्यूशन जो हम रेवोल्यूशन लेकर आए हैं उसके यानी कि अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं जो कि हम इनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। पुलिस जो थी वो बिल्कुल यहां पे नजर नहीं आई, मिलिट्री का भी कोई बंदा यहां पे नजर नहीं आया। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो ये सारे का सारा इलाका जो लीड करता है हसीना का जो ओल्ड फैमिली होम है जहां पे कि उनके फादर को और दूसरे रिलेटिव्स को गन डाउन किया गया था 50 ईयर्स बैक बाय द मिलिट्री इन अ कू, तो वहां पे वो लोग खड़े हुए थे। पहले तो वैसे तो ये घर जो था इसको म्यूजियम बनाया गया था लेकिन जब ये दंगे हुए थे अभी कुछ दिन पहले तो उसमें ये जो घर था इसको जला दिया गया था और वेंडलाइज किया गया था। और आज जो है देखा गया कि उसके सपोर्टर्स जो हैं शेख हसीना के उनको मारा पीटा गया और बाकी जो लोग थे उनको फिर कहा गया कि यहां से मूव कर जाओ, यहां पे जमा हम आपको नहीं होने देंगे। तो अभी भी अनरेस्ट ही चल रहा है, लग रहा है ऐसे है बांग्लादेश में। ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल, बड़ा जबरदस्त 32 रूम लग्जरी होटल है और इट इज लोकेटेड एट 2935 ड्रीव रोड मिसिसागा पे। और अगर आपको कोई अपने छोटे बड़े इवेंट्स करने हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6479653823। एंड जनाब राजा दे बादशाह जी, राजा बादशाह जी जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपको आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है और आपको अच्छा कवरेज चाहिए होम का और ऑटो इंश्योरेंस तो आप मेरे पास आओ, मैं आपके $1775 बचाऊंगा तो आप राजा बाशा को कॉल कर सकते हैं 6472903773 के ऊपर। ठीक है जी, आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक जनाब और तीन रिटायर्ड मिलिट्री के जो अफसर हैं उनको अब कस्टडी में ले लिया गया है, ये जो ताकि इनके खिलाफ मिलिट्री डिसिप्लिन चलाया जा सके अंडर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो कि अभी इन्होंने चलाई हुई हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो कह रहे हैं जी कि वो अंडर वे हैं और हम बिल्कुल किसी चीज को भी मुल्क के अंदर इनस्टेबल नहीं करने देंगे। ये सब लोग जिन्होंने के पॉलिटिकल कोल्यूजन्स किए और कोल्यूजन्स किए और पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उसमें यानी कि भाजी मारने की कोशिश की उन सब को जो है खींचा जाएगा। इसमें अब जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं आज उसमें से दो ब्रिगेडियर रैंक के बंदे हैं, तो इसमें ये है ब्रिगेडियर गफार और ब्रिगेडियर नईम और एक कर्नल है उसका नाम है आसिम। वो कहते हैं जी कि ये जो लोग थे सारे ये मैसेंजर्स की तरह काम कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज और फैज के बीच में। जो दो ब्रिगेडियर्स हैं वो चकवाल के रहने वाले हैं। अभी तक आठ लोगों को मिलिट्री ने अपने कस्टडी में लिया है और ये सारे के सारे जो है सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर्स नहीं है, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स भी इसमें हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही थी, उस पर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारर ने कहा जी कि हो सकता है कि और भी आने वाले दिनों में अरेस्ट हुए। मुल्क के अंदर जो है उसकी सिक्योरिटी अगर कोई भी स्टेक पे डालेगा तो उसको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। फैज हमीद के एक्शंस जो हैं देवर गाइडेड बाय इमरान खान, यानी कि सारे का सारा उन्होंने ब्लेम इमरान खान पे डाला कि वो इसको गाइड कर रहे थे और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया और उन्होंने भी कहा जी कि ये जो थे पॉलिटिक्स के अंदर काफी वो करते थे। इस सिलसिले में मैं आपको बड़ी आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मेरे जो दोस्त हैं अफसार आलम साहब, आपको पता ही है कि हमारे एक इंटरव्यू में उन्होंने पहले कहा था कि जी जनरल फैज हमीद मुझे फोन करके बड़ा प्रेशराइज करते थे, वो जो है सारी की सारी वो ऑडियो जो है वो लीक हो गई है। जो अफसार को वो कहते थे कि हम आपके पास बंदे भेजते हैं और वो हमें कहते हैं कि जो पेमरा का चेयरमैन है हमारा कोई काम नहीं करता है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी थॉट ऑफ टॉकिंग टू हिम लेकिन चूंकि अब वो समर टीवी के साथ हैं तो अंडर हिज कॉन्ट्रैक्ट वो हमारे से अब बात नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन वो भी आई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है, आप जरा सुने तो आपको पता चलेगा कि किस किस जगह के ऊपर जनरल फैज हमीद जो थे वो अपना जोर डालते थे। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है उनको अब कहा गया है, उन्होंने आज कहा है कि भाई फौरन ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रप्शन हैं इनको खत्म किया जाए विद इन टू वीक्स। इसके अंदर बात करते हुए जो इसकी मीटिंग की जो प्रेसिडेंट थी पीपीपी की सेनेटर पलवशा खान, उन्होंने आज ऑफिशियल्स बुलाए हुए थे आईटी मिनिस्ट्री के और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के और उनको कहा था कि ये आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करने की जरूरत है क्योंकि बिजनेसेस जो हैं वो लूज कर रहे हैं मनी और बहुत सारे लोग तो शटडाउन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर वो बिजनेसेस जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल उनको फेस वो कर रहे हैं क्योंकि वो तो ना तो व्हाट्सएप पे कुछ अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ डाल पा रहे हैं। आईटी मिनिस्टर मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है आयशा हुमेरा चौधरी, उन्होंने कहा जी कि ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आया था इसलिए ये डिस्ट्रप्शन आया है लेकिन हम इसको फिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये बड़ी हंसे हैं आज लोग, अगर आप जैसे ट्विटर देखेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के हम आईटी को बड़ा बढ़ावा देना चाहते हैं और आज सबकी इंटरेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग बात आमिर ये है कि न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है उस पे एक जिन साइज का जो है वो इसका मरियम नवाज साहिबा का पोस्टर लगा हुआ है जिसके के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है वो और उसमें लिखा जा रहा है कि पंजाब आईटी सिटी अब हम सेटअप कर रहे हैं जो इसका नाम है नवाज शरीफ आईटी सिटी और वो कह रहे हैं जी कि पंजाब के अंदर हम माशाल्लाह बेतहाशा तरक्कियां लेके आ रहे हैं। तो आपने एक तरफ टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर बड़ा ह्यूज सा पोस्टर लगाया कि हम तो बड़ी आईटी की तरक्की कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपके जो इंटरनेट और वो आपके सोशल मीडिया जो है वो रो रो के चल रहे हैं, तो ये बड़ा आज मौकरी है। तो ये इसके ऊपर आज लोगों ने इसकी बड़ी इनकी खिल्ली उतारी जो है यानी कि गवर्नमेंट की जाहिर है। आईएसपीआर की आज जनाब एक आई है प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि सात फितना अल खवारज ग्रुप के जो टेररिस्ट हैं उनको आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया खुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ट्रुप्स ने बड़ा इफेक्टिवली एंगेज किया इनके साथ। खवारिज के जो लोकेशन थी उस पर 7 को मारा और 5 जो थे बड़े इंजर्ड थे। आर्मी ने इनका एक हाइड आउट जो था उसको भी डिस्ट्रॉय किया और बहुत ज्यादा आर्म्स एम्यूनिशन एक्सप्लोजिव जो है रिकवर किए। उन्होंने कहा जी ये आदमी जो मारे गए हैं ये इन्वॉल्व थे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज के बंदों को मारने के लिए और इनोसेंट सिविलियंस को भी इन्होंने मारा था। सैनिटेशन का जो प्रोसेस है वो उस इलाके के अंदर अभी जारी है ताकि और कोई अगर टेररिस्ट है तो उनको भी पकड़ के मारा जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब उन्होंने आज बहुत ज्यादा पाकिस्तान आर्मी की सक्सेसफुल ऑपरेशन की तारीफ की और उन्होंने कहा जी कि आर्म्ड फोर्सेज वाले टायरलेसली काम कर रहे हैं दिन रात के अपने मुल्क को इस फितनाल खवारिज से जो है छुटकारा दिलाएं। तो कॉन्स्टेंटली जनाब ये पता नहीं कहां से इतने टेररिस्ट जो है आके बैठ गए हैं। बहरहाल जी बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है कहा है कि जी मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको मैं काटूंगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर मुझे बिल्कुल पता है कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता अगर बिजली जो है वो कम रहे। एक इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे टू सेलिब्रेट 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया नेशन को और उन्होंने कहा जी कि मैं अर्ज करता हूं यूथ को कि आप गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज जो हैं उनको आप सपोर्ट करें फॉर अ प्रॉस्परस स्टेबल एंड पीसफुल कंट्री। उन्होंने कहा जी यूथ जो है हमारा फ्यूचर है, आप बहुत ज्यादा कंट्री के डेवलपमेंट में की रोल जो है वो डाल सकते हैं और उन्होंने कहा जी कि आपका फोकस इस वक्त जो है सिर्फ स्टडीज के ऊपर और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, तो आप एनिमी के हाथ में मत खेलो क्योंकि ये एनिमी जो है ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज में आपको डाल रहे हैं और आप इनसे दूर रहें। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इन सब चीजों से पीछे रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी ये सब लोग जो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये हमारी न्यूक्लियर पावर से बहुत ज्यादा डरते हैं और इसीलिए हमारे मुल्क में डिस्ट्रप्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग डिजिटल टेररिज्म भी कर रहे हैं, बहुत सारा झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने फोर फादर्स जो थे पाकिस्तान के उनको बड़ी सेक्रीफाइसेस उनकी जो थी उसके लिए उनको होमेज दिया और उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे इसमें पाकिस्तान मूवमेंट में अनसंग हीरोज भी थे जिन्होंने कि कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की और हमको चाहिए कि हम उनके बिलीव्स और वैल्यूज के साथ रहें। भाईजान उनके बिलीव्स और वैल्यूज, उनका तो कोई एक भी बिलीफ और वैल्यू आपकी गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलता है। भाईजान क्या कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हो आप। अच्छा जनाब आज बहुत ही उथल पुथल हुई है जो पंजाब का जो पीटीआई का पूरे का पूरा यूनिट है उसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले तो सुबह खबर आई कि पीटीआई के लीडर हम्माद अजहर साहब ने जो पीटीआई के पंजाब रीजन के प्रेसिडेंट का जो रोल है उससे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और उन्होंने कहा जी कि मुझे बिल्कुल इमरान खान साहब पे एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की, मैंने किसी के साथ डील नहीं बनाई, मैं एक मुश्किल वक्त में भी खान साहब के साथ खड़ा रहा लेकिन मेरी मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मैं अडियाला जेल नहीं जा सकता, मैं इमरान खान साहब से नहीं मिल सकता और पंजाब के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए बहुत डिससेटिस्फाइड है कि हम डायरेक्टली उनसे हुक्म लेकर नहीं आ सकते हैं और इसकी वजह यह है कि एक लॉबिंग ग्रुप बन गया है पीटीआई के अंदर जो कि हमको इमरान खान से नहीं मिलने दिया दे रहा और इसलिए हमको उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। इसी तरह फिर एक उसके फौरन बाद एक लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर पीटीआई लाहौर के प्रेसिडेंट चौधरी असकर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल हाफिज जीशान जो हैं इन्होंने भी रिजाइन किया। गुज्जर ने थैंक किया अपने वर्कर्स का और उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान को निकालने की जो हमारी जो स्ट्रगल है उसको हम जारी रखेंगे और उन्होंने कहा जी कि अब जो भी कोई नया प्रेसिडेंट आएगा हम उससे सोचते हैं कि वो भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ जो पुलिस है उसने एक इन्वेस्टिगेटिंग जो इनकी टीम थी उसको भेजा था और इसको हेड कर रहे थे स्पेशल टीम के हेड फैसल सलीम, उनके साथ थे डीएसपी सिकंदर, डीएसपी फौजिया और इंस्पेक्टर्स कैसर, याकूब शाह, हसनैन अली और इन्होंने तकरीबन 30 मिनट का इंटरोगेशन किया है बुशरा बीबी के साथ इन मे 9 राइट्स और वो कह रहे हैं जी हमारे पास कुछ एविडेंस आया है जिसके तहत हम बुशरा बीबी से इंटरोगेशन कर रहे थे। खुश हो आमिर? बहुत खुश हो ना? ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जनाब बैक टू बैक आज 15 तारीख को दो फिल्में आई हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक तो IS 3-2 जो कि हॉरर कॉमेडी है और आज ये थिएटर्स में जब रिलीज हुई तो लोगों ने इसके ऊपर बेतहाशा इसकी तारीफ की, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त फिल्म है, खासतौर पर जो अक्षय कुमार का कैमियो है इसमें उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा कि जी ये जो ओरिजिनल जो फिल्म यानी कि जो पार्ट वन था इसका 3-2018 वो उससे भी ये अच्छी है। दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय अमर कौशल और इसमें फिल्म स्टार्स जो थे राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपर शक्ति खुरूना, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी इसके अंदर जो हैं वो कहते हैं जी बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट बैलेंस है ऑफ थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट, सीमलेस इसके अंदर मिक्स है ऑफ कॉमेडी स्टोरी लाइन और स्टनिंग विजुअल्स हैं, साउंड इफेक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं और जेन्युइनली चिलिंग इफेक्ट जो है वो आता है जब आप ये फिल्म को देखते हैं। इट्स अ फुल फ्लेश्ड वेल क्राफ्टेड एंटरटेनर और कुछ लोगों ने तो इसको कहा कि ये बिल्कुल एक जो है इस साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर बन के सामने आएगी। इसी तरह जो वेदा है, वेदा भी जो आज रिलीज की गई है, इसमें तो लोगों के रोंगटे इसलिए खड़े हुए कि इसके अंदर फिर से वही जो लोअर कास्ट के सिलसिले हैं उसको इसके अंदर हाईलाइट किया गया है, जो कि लोगों ने कहा विच वॉज वेरी वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसमें कि एक बच्ची जो है लोअर कास्ट की वो दिखाई जा रही है कि कैसे अपर कास्ट के लोग जो हैं उसको कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जैसे कि ये जो अपर कास्ट के हुलीगन्स हैं उसको सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और ये पानी तक मांगने के लिए एक अपर क्लास की औरत से कह रही है कि मुझे प्लीज पानी दे दें आप अपने कुएं से क्योंकि मैं बहुत प्यासी हूं। जॉन अब्राहम की ये फिल्म है और नजर तो इसमें आ रहा था कि शुरू में कि बेतहाशा एक्शन है लेकिन स्टोरी लाइन फिर भी इसकी बहुत अच्छी है और अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि जो एक हो रही थी इसकी प्रमोशन फिल्म की हो रही थी उसमें जॉन अब्राहम बड़े भड़क भी गए थे जब उन्होंने कहा जी ये हमें लग रही है अनदर एक्शन फिल्म, बहरहाल एक्शन तो है, अपनी शर्ट को उसी तरह इन्होंने इस फिल्म में भी रिप कर रहे हैं और मसल्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये जो है जैसे कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो ये फिल्म ब्यूटी विद ब्रेन्स है, ये बिल्कुल ब्रेनलेस जो है एक्शन फिल्म नहीं है। तो आज एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में कहा कि वेदा हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस, यानी कि बड़ी अच्छी स्ट्रांग फिल्म है और हर फ्रेम के अंदर एक एक फ्रेम के ऊपर वो कहते हैं जी कि डायरेक्टर ने बड़ा काम किया है, तो इसका भी जो है अच्छा रिव्यू आया है। और जनाब शाहरुख खान साहब जो आजकल अमेरिका में हैं उनसे बहुत सारे आजकल इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि जी आपकी जो ये फिल्म किंग आ रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। उसके ऊपर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि सुजॉय घोष की जो ये फिल्म है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने कि पठान भी बनाई थी और बड़ी जबरदस्त एक्शन ड्रामा है। वो कहते हैं जी कि मैं बड़े 7-8 साल से इस तरह की एक फिल्म करना चाहता था और मुझे लगा कि सुजॉय जो है इस फिल्म को अच्छे से बना सकेगा, इसके अंदर जो है वो बड़े करेक्ट इमोशंस हमको चाहिए थे तो वो इमोशंस जो है वो सुजॉय डाल सकता था। और उन्होंने कहा जी कि आपको बहुत मजा आने वाला है इसको देख के, इट इज कूल, इट इज मेसी, इट हैज एक्शन एंड इट इज एन इमोशनल फिल्म। इस फिल्म में इनके साथ स्टारिंग जो स्टार कर रही हैं वो इनकी अपनी खुद की बेटी सुहाना खान भी हैं और इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन जो हैं वो भी एक ही रोल में इसमें नजर आएंगे आपको, ठीक है जी। अर्शद नदीम साहब जो हैं जेवलिन थ्रो जिन्होंने के जनाब 40 साल के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, उनको आज पीएम हाउस में होस्ट किया गया था, उनकी शान में एक बैंक्वेट दी गई थी, तो ये अपनी फैमिली और कोच यहां पे जो है सलमान इकबाल बट उनके साथ यहां पे आए थे। अराइवल पे इनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो रिसीव किया और बड़ा इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं ये सारा कुछ जो है मैं कर सका हूं। अर्शद ने कहा जी कि अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल जो दिया है ये इसमें मेरे फैमिली की और मेरी नेशन की बड़ी दुआएं हैं और मेरा नेक्स्ट जो अब गोल है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ना चाहता हूं। फिर उसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और अपने कोच का भी शुक्रिया अदा किया और उसके साथ साथ डॉक्टर अली शेर बाजवा का भी किया क्योंकि वो इनके जो थे वो फिजियो थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा जी कि बहुत ये इनकी हेल्प की वजह से मैं जान। और आपने देखा आमिर के कितना टॉल है ये लड़का, इसका क्या कद है, इसकी क्या हाइट है, 5'2" 5'3" कितना है ये,
5'6" 6'3" 6'2" 6'3"
है ना, बहुत ज्यादा टॉल है, वेरी टॉल, या नहीं नहीं 6 से तो बहुत ऊपर बात निकल गई है और मुझे लगता है 6'3" 6'4" होगा ये कोई, इस तरह काफी टॉल है। अच्छा जनाब इसके अलावा अर्शद नदीम साहब जो हैं उनको बड़ा वार्मली रिसीव किया गया, जो गवर्नर सिंध हैं कमरान खान टिसौरी उन्होंने भी एट गवर्नर हाउस उनके इनकी शान में उन्होंने रिसेप्शन दिया हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको कैश प्राइज देंगे ऑफ 2 मिलियन रूपीज। उन्होंने इनकी डेडिकेशन की बड़ी तारीफ की टिसौरी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि इस बहुत लंबे अरसे के बाद आप इस नेशन के अंदर एक जॉय लेकर आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं सिंध से यहां पे आए हुए थे जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे, उन्होंने भी बहुत एडिशनल रिवॉर्ड्स जो हैं और इंसेंटिव इनके लिए अनाउंस किए हैं। टिसौरी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि सिंध की गवर्नमेंट भी 50 मिलियन देगी और ऑल टुगेदर हम आपको 100 मिलियन रुपीस देंगे यहां से जमा करके।
क्या बात है
जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अर्शद साहब जो है उन्होंने इनके शुक्रिया अदा किया और जो है पीपल ऑफ कराची उनका भी शुक्रिया किया, उन्होंने कहा जी कि उनका बड़ा प्यार है और मैं बड़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जनाब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के जो कोच हैं जेसन गिल्सपी, उन्होंने उनके ऊपर बड़ा एतराज आ रहा था कि जो बांग्लादेश के साथ जो शुरू होने वाला है टेस्ट, उसके अंदर सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को इन्होंने रखा है, तो उसको इन्होंने आज बड़ा डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एक बैलेंस और पोटेंशियल टीम जो है वो बनानी थी जिसके के अंदर ये हैं और एक हमारी जो हम देखते हैं कि ड्यूल कैपेबिलिटीज हैं वो सलमान अली आगा के अंदर भी हैं, वो भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो उन्होंने कहा जी कि हम कंसिडर कर रहे हैं सलमान अबरार अहमद को एज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, और सलमान ने बहुत ही रिमार्केबल स्किल शो किया है ऑफ स्पिन में, और अबरार जो है वो अभी अपने करियर के शुरू में ही बड़ा फाइन टैलेंट बन के सामने आया है। उन्होंने कहा जी कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही इस सीरीज के अंदर टेस्ट की जाएगी, बड़ी ही इंस्ट्रूमेंटल है। हम एक बड़ा रोबस्ट लाइनअप जो है ऑफ प्लेयर्स हमने तैयार किया है जिसके के अंदर बहुत सारे पेसर्स भी हैं और दो स्पिन बॉलर्स हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ये बड़ी जो है एक्साइटिंग सीरीज रहने वाली है। ये जो टेस्ट सीरीज है जी जो शुरू हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, इसका जो पहले मैच पहला जो टेस्ट है वो अगस्त 21st से 25th के बीच में पिंडी में रहेगा। ये जो पिच है यहां पे रावलपिंडी स्टेडियम की, ये फेवर करेगी फास्ट बॉलर्स को। पाकिस्तान जो है उसने बांग्लादेश के साथ खेलने के लिए चार पेसर्स जो हैं उनको भी ओपनिंग टेस्ट के अंदर डाला है, जिसमें कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मीर हमजा जो हैं वो पेस अटैक जो है वो करेंगे, और इनके साथ साथ आगा सलमान जो है वो भी होएगा। अभी तक टीम ने डिसाइड नहीं किया, यानी कि या सेलेक्टर्स ने डिसाइड नहीं किया है कि खुर्रम शहजाद को लेना है कि मोहम्मद अली को लेना है फोर्थ पेस ऑप्शन के लिए, लेकिन उसकी जाहिर है कि जल्दी ही हमें पता चलेगी तो हम भी आपको भी बताएंगे। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील जो हैं वो बैटिंग करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे। मोहम्मद हुरैरा जो है उसको टेस्ट डेब्यू दिया जा सकता है और वो पार्टनर करेंगे अब्दुल्ला शफी के साथ एट टॉप ऑफ द ऑर्डर। इसके अलावा जो पिंडी की ओवरकास्ट कंडीशन है उसमें भी वो देखेंगे कि टीम ने कहा है और पीसीबी ने भी कहा है कि हम उस वक्त देखेंगे कि हमको नहीं सॉरी पीसीबी ने नहीं सेलेक्टर्स कोचेस ने कहा है कि हम उस वक्त की कंडीशंस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। और जनाब इसके बाद जाएंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, तो हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम जल्दी से अपनी रिपोर्ट करते हैं।
56 पर जो है वो हमारे पास टाइम है,
हाँ 12 एक मिनट है हमारे पास, तो बस 12 मिनट में खत्म करेंगे। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय हांडी मिल्टन हलाल फूड फेस्टिवल, जिसके के अंदर आ रहे हैं कैफी खलील, और ये जो इवेंट है ये होने वाला है मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क के अंदर। अगर आपको कोई बूथ या कोई स्पॉन्सरशिप्स आपने देनी है तो आप सारा यूनुस को कॉल कर सकते हैं 6478217861। ये इवेंट जो है 17 अगस्त को होने वाला है, फ्री एडमिशन फ्री पार्किंग है, तो आप जो है इधर जा सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो हमारे सुल्तान भाई हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे बड़ी जबरदस्त सुविधाएं देते हैं, आपको पता ही है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे हैं, और इनके पास बड़ी लो प्राइस पे आपको सारे जो अप्लायंसेस है वो मिल जाएंगे कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं अच्छी डील के लिए @9054502828। अच्छा जनाब, हमने आपको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के जो नेशनल डेज होंगे उनके ऊपर हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, कोई ना पाकिस्तान की बैशिंग होगी ना तो जो है वो उसकी इंडिया की होगी। कल हमने आपको पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल रिपोर्ट सुनाई थी, आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट सुना रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया की ये जो रिपोर्ट है, कल जैसे मैंने आपको बताया था मैंने कैसे वो रिपोर्ट प्रिपेयर किया, तो आज मैं भी आपको ये भी बता रही हूं कि ये जो रिपोर्ट है मैंने प्रिपेयर की है पीटीआई यानी कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्टोरीज, फ्री प्रेस जर्नल और टाइम मैगजीन जो है उससे लेके ये मैंने सारी स्टोरी जो है इनकी इंडिया के ऊपर स्पेशल रिपोर्ट जो है मैंने तैयार की है। अच्छा जी, इंडिया वो कहते हैं जी कि जैसे जो है आज बड़ी जोरों शोर से अपना जो है इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, तो वो कहते हैं जी कि लेट्स टेक द क्लॉक बैक, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाई थी ऑन August 15th, 1947, तो उस वक्त माहौल जो था वो क्या था, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो ये जो स्पेशल रिपोर्ट है जनाब, इसके अंदर आप आज देख सकेंगे आपके सारे जो फेवरेट जो लीडर्स थे जैसे कि नेहरू साहब, गांधी साहब और सुभाष चंद्र बोस, वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे जो थे ये बड़े बड़े नेम्स जिनकी के वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिली, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे मैंने उनका नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, एनी बसंत, अरुणा असाफ अली और बहुत सारे लोग जिन्होंने के आजादी के लिए लड़ा था, तो वो सब जो थे वो बड़ी खुशियां मना रहे थे।
और जो आजादी की जो मूवमेंट थी उसने मोमेंटम ले लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और ब्रिटेन जो था वो बहुत ज्यादा फेस कर रहा था इंटरनल इश्यूज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो हमें टीवी पे तस्वीरें दिखा रहे हैं जीशान या नवदीप, हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं, तो अगर आप दिखाएंगे तो जरा जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उनको जरा मजा आएगा अपने लीडर्स की तस्वीरें देख के. तो वो कहते हैं जी कि ये जो इंटरनल हालत थी ब्रिटेन की, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेनतहा खराब हो गई थी और वो बड़े अनसर्टन थे कि अब वो हिंदुस्तान को क्या रूल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था और गांधी जी ने कॉल दे दी थी सेल्फ रूल के लिए. इन अर्ली 1947 यूके के जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने जो था वो अनाउंस कर दिया था और प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिश रूल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जून 1948 में खत्म हो जाएगा. लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा अनरेस्ट हो गया था, तो इंडिया के जो लास्ट वॉयस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए ये चीजें कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिफर गई हैं. इसलिए जो एडवांस्ड उन्होंने एडवांस कर दी थी डेट जून 1948 के बजाय अगस्त 15, 1947 जो था उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे. और जाहिर है कि इसकी डिवीजन जो थी इंडिया और पाकिस्तान में होनी थी, क्योंकि पैरेलल जो वहां पे मूवमेंट चल रही थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान मूवमेंट, उसमें कहा गया था कि जो एक और इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बनाने की जरूरत है. नेहरू साहब जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने अपने घर में, पार्लियामेंट में जाने से पहले उन्होंने अपने घर में हिंदू होली मैन जो थे उनको दिल्ली में बुलाया था, और फिर उसके बाद वो और बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हॉल था पार्लियामेंट में उसमें जमा हो गए थे. और ये वो मौका था जिसपे के नेहरू साहब ने अपनी बड़ी ही जो फेमस उनकी स्पीच है ट्रायस्ट विद डेस्टिनी वो उन्होंने दी थी. उन्होंने कहा जी फॉर लॉन्ग ईयर्स अगो अ ट्रायस्ट विद डेस्टिनी वॉज फॉट बट नाउ टाइम हैज कम एंड वी शैल रीडीम द प्लेज, यानी कि प्लेज टू रीबिल्ड द कंट्री. उन्होंने कहा जी कि जो ये मिडनाइट आवर में जब दुनिया सो रही थी तो इन दी इंडिया में फ्रीडम और लाइफ यानी कि जिंदगी जो थी वो जाग उठी थी, और ये मूवमेंट जो है और ये जो मोमेंट है इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है क्योंकि ये हिस्ट्री के अंदर बहुत ही रेयर है. ये हमें ओल्ड से न्यू की तरफ लेके जाएगा, और जैसे जैसे हम ओल्ड से न्यू की तरफ जाएंगे और हमारी जो नेशन की सोल है जिसको कि बहुत अरसे से सप्रेस किया गया था, तो वो अब जो है हौले हौले अपने विंग्स यानी कि खोलने शुरू कर देगी, आजादी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी. कांग्रेस जो थी उन्होंने इस मौके पे जितने भी सिनेमा हॉल्स थे हिंदुस्तान के अंदर उनको कहा था कि आप फ्री स्क्रीनिंग करेंगे इंडिया की फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस, और ये जो इवेंट था ये शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जहां पे के हजारों ही जिसकी के बिल्डिंग के बाहर जो है इंडियंस वो जमा हुए हुए थे. टॉप पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो हॉल के अंदर मौजूद थे. इस मौके पे 2 मिनट की साइलेंस जो थी वो भी की गई ताकि वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो कि इस फ्रीडम की स्ट्रगल में जिनकी के डेथ हो गई है उनको जो है होमेज दिया जा सके. वैसे भी उस वक्त जो है इनका जो अब गाना, ये जो इनका जो अब तराना है जना गना मना जो था वो उस वक्त तक नहीं बना हुआ था, वो हिंदुस्तान का नेशनल एंथम नहीं था. ये हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बना था January 24, 1950 को, तो इसलिए वंदे मातरम जो था उस वक्त फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गाया गया. और उसके साथ साथ जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि 12th चाइम ऑफ मिडनाइट जो थी वो बजाई गई थी, और फिर एक कूंज शेल, आपको पता ही है कि ये जो हिंदू हैं ये एक बड़ा सारा एक सी शेल सा होता है जिसके अंदर वो जब फूंक मारते हैं तो बड़ी ऊंची सी आवाज आती है, आपने अक्सर इंडियन फिल्मों में देखी होगी कू करके जो आती है, तो वो उसका जिक्र है कि वो जो कूंज शेल था उसके अंदर से फिर जी जो है वो यानी कि उसको बजाया गया था बताने के लिए कि भई ये खुशी का मौका है, हम आजाद हैं, पूरे चेंबर के अंदर जो है वो गूंजा था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस मौके पे खड़ी हो गई थी और मेंबर्स जो थे उन्होंने प्लेज किया था कि हम सर्व करेंगे इंडिया को और उसके लोगों को. दिल्ली के अंदर तो बेतहाशा खुशी का समा था क्योंकि जाहिर है दिल्ली जो थी वो राजधानी भी थी और वहां पे जो नेशनल फ्लैग के जो कलर्स थे ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, पूरा लग रहा था कि जैसे दिल्ली ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ही हो गया है. बल्कि बहुत सारे लोग जो किसान थे उनके जो गाय बैल थे उन्होंने उनके हॉर्न्स जो थे और उनके जो लेग्स थे उनको नेशनल कलर्स में भी पेंट किया हुआ था. जिनके पास हॉर्सेस थे उन्होंने उनको नेशनल कलर्स में पेंट किया हुआ था. सिल्क मर्चेंट्स जो थे उन्होंने तो जनाब बेतहाशा ट्राई कलर की साड़ीज उस दिन बेची और बहुत जबरदस्त उन्होंने बिजनेस किया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उसमें अनाउंस किया गया कि आजादी के मौके पे तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री किया जाए, जो लोग डेथ सेंटेंस के ऊपर हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, और यहां तक कि जो मुसलमानों के स्लॉटर हाउसेज होते हैं उन तक को बंद रखा गया और कहा गया कि आज के दिन कोई भी एनिमल्स जो हैं उनका सेक्रीफाइस नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो ट्राई कलर यानी कि जो उनका झंडा था फॉर द फर्स्ट टाइम होइस्ट किया गया प्रिंसेस पार्क में नियर इंडिया गेट ऑन अगस्त 15, और नेक्स्ट डे नेहरू साहब ने जो ये नेशनल फ्लैग था फिर इसको लाल किले के ऊपर फिर अनफोल्ड किया था, उसको उसके ऊपर उसको किया था, चढ़ाया था। 500,000 के करीब लोग जो थे पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के बाहर जो थे वो खड़े हुए थे और वो चिल्ला रहे थे इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, और वो नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे और ड्रम मचा रहे थे। लेकिन जिस वक्त लोग कह रहे थे महात्मा गांधी की जय और बाकी तो तमाम लीडर्स यहां पे थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, लेकिन जो बापू थे जो कि गांधी जी जो थे वो दिल्ली में उस दिन इन सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं थे, तो लोगों को तो वैसे ज्यादा को पता नहीं चला, लेकिन जिन जिन को पता चला उनको बड़ी हैरत हुई कि जो बापू है नेशन का वो आज दिल्ली में ये सारी सेलिब्रेशंस के लिए नहीं है। वो इसलिए वहां पे नहीं थे क्योंकि वो कोलकाता में थे, उस वक्त उस जगह को कलकत्ता कहा जाता था, आजकल उसको कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता के अंदर थे क्योंकि वहां पे पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारा कॉमनल राइट्स जो थे वो शुरू होने के जो थे वो चांसेस थे, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, तो इसलिए गांधी जी कोलकाता के अंदर थे और उन्होंने कहा जी कि हमको अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई है लेकिन अब हम सबको एक साथ मिलकर रहना है। गांधी जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इंडिया की दो आंखें हैं और इनको जो है साथ साथ ही रहना पड़ेगा, अलहदा ये नहीं रह सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली में क्यों नहीं हैं तो उन्होंने कहा जी कि 14 और 15 की रात को मैं अपनी खाड़ी जो है वो उसके ऊपर वो अपना वो स्पिन करूंगा और फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा, ये जानते हुए कि इस मुल्क के अंदर अब कुछ और दंगे नहीं होंगे। इसके ऊपर बात करते हुए तुषार गांधी जिन्होंने के लिखा है अब हिंदू में लिखा था कि ये सारी डिटेल्स जो हैं उनको खुद से जो थी वो पता थी, तो इसलिए उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखा, अकॉर्डिंग टू कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, एक लेटर जो उन्होंने लिखा अपने दोस्त को अगाथा हैरिसन को लंदन में, तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही बड़ा दिन है जिसमें कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फ्रीडम, और मैं शुक्र करता हूं खुदा का और मैं प्रे करता हूं कि मेरा मुल्क जो है इसी तरह आगे चले। तो जनाब ये थी आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट हिंदुस्तान की आजादी पे।
जबरदस्त जनाब, बिल्कुल, और आई होप कि तमाम सामईन को और नाज़रीन को ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी। शाज़िया जी ने बहुत ही मेहनत के साथ जो है तरतीब दी जनाब। अब जो है वो प्रोग्राम जो है ये सेगमेंट अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, इसके बाद आप टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक लेंगे हम, और बुरी बिस्सी यादें लियाकत मलिक साहब अपना रंग रंग प्रोग्राम लेके आपके साथ आएंगे। 8:15 बजे तक आपका और हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो 6478724900 पर डायल कर सकते हैं। शैल जी आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी आमिर,
बहुत शुक्रिया जनाब, और तमाम सामईन का और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं टॉप ऑफ द आवर के ब्रेक की तरफ, मुझे आमिर अहमद को इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।
आसान, यूज लिम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं बराह रास्त, जिसको आप भेजना चाहें, बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर, कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लिम्फाई,
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-7649-0241।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन।